بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی نشست کو لے کے ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے. آغاز کرتے ہیں ہم سب. شکریہ آپ کے وقت کا. جماعت اسلامی ماضی حال مستقبل سلسلہ گفتگو کی آج 12ویں نشست ہے, اور ان 12 نشستوں میں غامدی صاحب سے ہم جماعت کے قیام, اغراض و مقاصد, اس کی زندگی میں پیش آنے والے اہم مراحل, اہم واقعات, ان کا تجزیہ ہم نے طلب کیا تھا اور نتیجے کی طرف ہم پہنچ چکے تھے. گزشتہ کل اس پہلو پر بات ہوئی کہ 70 کے الیکشن میں جماعت اسلامی کو جو ایک بدترین شکست ہوئی, الیکشن تک پہنچنے کا یہ سفر کیسے مولانا مودودی کی اس حکمت عملی کا ناگزیر تقاضا تھا, اس سب پر غامدی صاحب سے ہم نے جانا. گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. غامدی صاحب, مولانا مودودی نے ایک نظریہ پیش کیا, اس نظریے کے کچھ مراحل تھے, کچھ نتائج تھے, وہ اپنی اسی سمت میں آگے بڑھے, لیکن جو چیز سمجھ میں نہیں آتی وہ یہ ہے کہ پاکستان ایک ملک بنا, اسلام کے نام پر بنا, اکثریت مسلمانوں کی تھی. منطقی طور پہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جس وقت مولانا مودودی نے اپنی دعوت, فکر, سیاست کے میدان میں آ کے پیش کی, تو علم, عقل, استدلال یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کو تو خوشی سے آگے بڑھنا چاہیے تھا کہ بھائی اسلام کا بول بالا ہو, مملکت میں نظام اسلامی نافذ ہو, صالحین کے ہاتھ میں اقتدار کی کنجیاں دے دی جائیں, لیکن ملت نے, مملکت نے, عوام نے اس نعرے کو یکسر نظر انداز کر دیا. دین اور مذہب کے نام پر بننے والی ایک سیاسی پارٹی کیوں آخر اس ناکامی سے دوچار ہوئی؟
میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ مولانا سید عبداللہ صاحب مودودی دین کے ایک جلیل القدر عالم ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص دین کا عالم ہے, یا یہ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی فلاں فن کا بڑا ماہر ہے, اس کے بارے میں یہ رائے کب قائم ہوگی؟ کوئی 30, 40, 50 سال وہ دنیا میں گزارے گا, وہ فن سیکھے گا, اس علم کا سچا طالب علم بنے گا, اس کے بعد پھر اس علم کا اس سے ظہور ہوگا. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ ایک جلیل القدر عالم ہے, اور ان کے علم کا ظہور مجتہدانہ بصیرت کے ساتھ ہوا ہے. میں نے اس سے پہلے ایک نشست میں یہ بتایا تھا کہ علماء کی کیا کیا اقسام یا اصناف ہو سکتی ہیں. اس میں جو مجتہد کی سطح کے علماء ہیں ان کو بغیر کسی تردد کے انہی میں شامل کیا جا سکتا ہے, لیکن ان کی شخصیت کے بارے میں یہ رائے کب قائم ہوگی؟ کوئی 40-50 سال لگیں گے, وہ کام کریں گے, اس کام کے کچھ نتائج سامنے آئیں گے, کچھ لوگ ان کی بصیرت کا اندازہ کریں گے, ان کے علم کا ظہور ہوگا, اس سے فائدہ اٹھائیں گے. اخذ و استفادے کا یہ عمل ہے جو یہ رائے قائم کرنے کے لیے آمادہ کرے گا. اس طرح کی کسی شخصیت کا اصل تعارف وہی ہے. ایک دین کے عالم کا یہ تعارف جب آخری درجے میں پختہ ہو گیا, لوگوں کے ذہنوں میں راسخ ہو گیا, وہ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں, ان کو دین سمجھنا ہوتا ہے, وہ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں, انہیں آخرت کی طلب ہوتی ہے, وہ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں جب دین کی کوئی بات ان کے لیے ناقابل فہم ہو جائے, وہ اس کی شرح و وضاحت طلب کر رہے ہوں. ان کا تعلق, یعنی لوگوں کا تعلق ایک دین کے بڑے عالم سے انہی پہلوؤں سے استوار ہوا ہے, انہی پہلوؤں سے محکم ہوا ہے, انہی پہلوؤں سے پختہ تر ہو کر ایک خاص مقام تک پہنچا ہے. اس کے دوران میں دین کے عالم کی حیثیت سے اگر اس کی حقیقت کو دو لفظوں میں بیان کیا جائے تو وہ موت کا منظر ہے. یعنی لوگوں کو یہ بتاتا ہے کہ ایک دن یہ دنیا ختم ہونے والی ہے, اس کے بعد ایک نئی دنیا وجود میں آئے گی, اس نئی دنیا میں تمہیں خدا کے سامنے پیش ہونا ہے. قرآن مجید کو بھی ہم کہتے ہیں کہ وہ پیغمبر کا انذار ہے, یعنی پیغمبر موت کے بارے میں خبردار کر رہا ہے. لوگوں کو جب وہ یک بیک آ کے کہتا ہے کہ میں تمہاری دنیا سنوارنے کا ایک پروگرام لے کے آ گیا ہوں, تو یہ ان کے لیے بالکل ناقابل فہم ہو جاتا ہے.
جی,
اس کو وہ لفظوں میں ادا نہ کر سکیں, لیکن یہ واقعہ ہے کہ ان کی نفسیات اس کو اگل دیتی, وہ اس کو قبول کرنے ہی کے لیے تیار نہیں ہوتے. یعنی ساری شخصیت کا تعارف کیا ہے, یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جس طریقے سے مثال کے طور پر ایک آدمی دین کا بڑا عالم ہے, دین کے بارے میں گفتگو کرتا ہے, یا وہ کسی اور فن میں مہارت رکھتا ہے, وہ اچانک ایک دن مجھ سے کہے کہ مجھ سے علاج کرا لو, میں پیچھے مڑ کے دیکھوں گا کہ میرا تو اس کے ساتھ یہ تعارف نہیں تھا, میں نے تو کبھی اس کو اس طریقے سے دیکھا ہی نہیں تھا. میں تو اس کے پاس جب آتا تھا मुझे कोई कुरान मजीद की बात समझनी है, मुझे कोई हदीस की मुश्किल हल करनी है, मुझे कोई अपनी आखिरत के बारे में नसीहत हासिल करनी है, तो मैं तो हमेशा इसी तरह आता था इसके पास, इस मकसद के लिए कि ये मेरी कोई दुनिया संवारने का मंसूबा रखता है, ये मेरे मामलात को दुनिया में कोई हल करेगा, ये मेरी मईशत में कोई मेरी रहनुमाई फरमाएगा, ये मेरे सियासी मामलात में कहीं मेरा हाथ पकड़ेगा। ये सब चीज़ें तो मैंने कभी इससे मतवक्का ही नहीं समझी थी। तो ये क्या बात है जो नई बात की जा रही है। चुनांचे मुसलमानों की पूरी तारीख में अगर आप देखें तो उन्होंने कभी भी उलमा को इस हैसियत से कबूल नहीं किया। उनका एक गिरोह ज़रूर ऐसा है जिसने पहले दिन से ये नुक्ता नज़र इख्तियार किया कि सियासत व इमामत का मामला दुनियावी नहीं है, यानी दुनिया का हुक्मरान कहाँ से आएगा। वो पहले दिन से ये राय रखते हैं कि वो खुदा मुकर्रर करेगा। उनके यहाँ तो इसकी कोई गुंजाइश है कि वो फिर जब इमाम ना हो तो उसका कोई कायम मुकाम तलाश करें, और उनके यहाँ ये बात चल भी सकती है कि एक बड़ा फकीह उसका कायम मुकाम हो जाएगा, क्योंकि पहले दिन से तारुफ यही है, बुनियाद यही है कि हुक्मरानी भी कोई दुनियावी मसला नहीं है। इसके बिल्कुल बरखिलाफ जो सवाद आज़म है या मेन स्ट्रीम है, सुन्नी मदरसा फ़िक्र है, उसमें तो ये तसव्वुर कभी नहीं रहा। वहाँ सियासत का मामला एक दुनियावी मामला है। दुनियावी मामले का मतलब ये नहीं होता कि दीन उससे मुतल्लक नहीं है। ज़ाहिर है, मैं जब कारोबार करने के लिए बैठता हूँ तो वहाँ भी मेरा दीन मुझसे ये कहता है कि तुमने शराफत और तहजीब के साथ बात करनी है, ग्राहक से झूठ नहीं बोलना, उसको धोखा नहीं देना, अखलाकी उसूल बताता है। लेकिन बजाय खुद कारोबार, कारोबार की हुनरमंदी, इसका तो दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आपको मिसाल के तौर पर किसी आदमी से कारोबार करना हो तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि इसकी कारोबार में क्या हजाकत है, क्या चीज़ है। इसके सिवा आपको बावर कराना आसान काम नहीं होगा। तो मौलाना सैयद अबरुल्ला साहब मौदूदी 1903 में पैदा हुए हैं। उन्होंने 1941 में जमात इस्लामी की बुनियाद रखी है। 47 तक तो इस तरह की कोई चीज़ थी नहीं। पाकिस्तान बनने के बाद कहीं 50-51 में जाकर वो अब ये फैसला कर रहे हैं कि वो इस मुल्क के इकतदार को अपने हाथ में लेना चाहते हैं। सियासत का मतलब यही होता है, यानी अब ये इकतदार हमारे हाथ में आना चाहिए, हम इस पोजीशन में आ गए हैं कि इकतदार संभाल लें। तो आमतुन्नास के बारे में आप मुझे ये बताएं कि वो चशम जदन में अपने सारे जहनी पस मंज़र को कैसे तब्दील कर लें। यही वो गलती है जो बारहा हमारे यहाँ मजहबी जहन करता है, यानी वो ये समझते नहीं हैं कि इंसानी नफ्सियात कैसे काम करती है। इंसानी नफ्सियात में जब एक मर्तबा एक शख्सियत का एक तासुर कायम हो जाता है तो आप इस तासुर को ख़त्म नहीं कर सकते आसानी के साथ। उसको ख़त्म करने के लिए फिर 50 साल चाहिए। अच्छा, फिर क्या वो 50 साल मौलाना सैयद अबरुल्ला साहब मौदूदी ने बसर किए? यानी मिसाल के तौर पर एक आदमी डॉक्टर था, बड़ा डॉक्टर बना, बहुत से लोग उसके पास अपनी अमराज का इलाज कराने जाते थे। उसने एक दिन अपना क्लिनिक बंद किया, फिर वो गलियों में निकल खड़ा हुआ और उसने कहा कि अब मैं सियासत करूँगा। तो फिर कोई 30-40 साल वो दोबारा धक्के खाएगा, फिर लोगों की खिदमत करेगा। तो एक जो तस्वीर बनी है, पहले वो तस्वीर रेजा रेजा होगी, फिर एक नई तस्वीर बनेगी। तो जिस वक्त एक आलिम की तस्वीर बनती है, 40-50 साल में जाके बनती है, एक बड़े आलिम की तस्वीर, इसको मुझे बताइए कि चश्म जदन में लोग अपने जहनों से मैप कैसे करते। पहली चीज़ जो है, पहली ज़रूरी चीज़ जो सियासत में कामयाबी के लिए है, वो ये है कि जैसे ही कोई शख्स सामने आए तो लोगों के लिए वो फिलवाके उस मैदान में कामयाबी की जमानत देने वाला महसूस हो, उस मैदान का शाहसवार लगता हो। ऐसा होता है बारहा कि लोग एक पस मंज़र से उठते हैं और फिर एक दूसरी चीज़ इख्तियार करते हैं, लेकिन वो दूसरी चीज़ 2 दिन में फिर हासिल नहीं होती। यानी उसमें एक नया जन्म लेना पड़ता है, एक नई शख्सियत पैदा करनी पड़ती है। मौलाना सैयद अबरुल्ला मौदूदी ने ना सिर्फ ये कि जो उनका तारुफ था, जो उनकी हैसियत थी, आज भी अगर आम आदमी उनकी तरफ रजू करेगा तो तफहीमुल कुरान पढ़ने के लिए रजू करेगा, रसायल व मसाइल से हद उठाएगा। वो ये देखेगा कि देखिए उन्होंने किस खूबी के साथ फलां हदीस को वाज़े कर दिया, फलां आयत की सही तफसीर कर दी, फलां मसले को हल कर दिया। मुझे ये बताइए, आप भी आज रजू करते हैं तो किस मकसद के लिए रजू करते हैं? उनकी तसनीफ़ात उठाते हैं या उनको देखते हैं तो किस मकसद के लिए देखते हैं? तो सारी तस्वीर जहन में वही बनी हुई है। इस तस्वीर में एक सियासी लीडर की तस्वीर कहाँ से ला के फिट की जाए, वो इंसानी जहन के लिए मुमकिन ही नहीं है। यानी अगर आप इस्तदलाल करके लोगों को कायल करना चाहेंगे, दो को कर लेंगे, चार को कर लेंगे, तो लाख डेढ़ लाख को कायल कर लेंगे 20-22 करोड़ की आबादी में, वो उन्होंने भी कर लिया। लेकिन अब आप कह ये रहे हैं कि करोड़ों लोग इस तस्वीर को महव कर दें और एक नई तस्वीर अपने जहन में दाखिल करें। उस नई तस्वीर के लिए अगर उन्होंने अपना सब काम छोड़कर सही की होती, उसके बाद कोई 25-30 साल 40 साल उसमें लगाए होते, उसके बाद वो लोगों से तवक्को करते, तो कोई बात भी थी। आप दिलचस्प बात देखें कि ना वो 51 के इंतखाबात में खुद खड़े हुए, ना 70 के इंतखाबात। ये वो बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि उनकी शख्सियत इसके लिए बनी ही नहीं, खुद भी जानते हैं। तो इस तरह की सूरत हाल में उनको मिसाल के तौर पर मुकाबिल में मोहम्मद अली जिना है, या मुकाबिल में जुल्फकार अली भुट्टो है, या और कोई लीडर है, मुझे बताएं लोग कैसे कबूल कर। तो पहली बड़ी बुनियादी चीज़ ये है कि जो शख्स भी एक लीडर की हैसियत से, सियासी रहनुमा की हैसियत से मैदान में उतरेगा, उसकी अपनी नश्वो नुमा को उस पर शहादत देनी चाहिए, उसका वो तासुर बनेगा तो लोग उसको कबूल करेंगे। हाँ, अलबत्ता एक दूसरा रास्ता है, वो दूसरा रास्ता ये है कि ताकत के ज़रिए से कब्ज़ा करने का इरादा हो। वहाँ पर ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं होती। वहाँ अगर आप 100-150 लोगों को, या बाज़ हालात में 1,000-2,000 या लाख लोगों को तैयार कर लें कि वो आपके इस नए जन्म को कबूल कर लें, और फिर वो लड़ने मरने के लिए आमादा हो जाए, तो फिर आप लड़ मर कर कोई चीज़ हासिल कर लें। वहाँ ये ज़रूरत ही नहीं है। हमारे यहाँ उलमा ने लश्कर बनाए हैं, उनकी रहनुमाई भी की है, तारीख़ में भी ऐसा हुआ है। हम देखते हैं कि सऊदी अरब में भी एक ख़ास तरीके से इकदाम हुआ, और अब हमने अफ़गानिस्तान में भी देखा है। तो वहाँ पर बिल्कुल दूसरा तरीका इख्तियार किया गया है। उस दूसरे तरीके में अफ़गानिस्तान की कौम से वोट लेने की ज़रूरत नहीं महसूस की गई, यानी लोगों का जहन बदले, लोगों का तासुर बदले। उसमें हो सकता है कि रहनुमा कहीं दूर किसी जगह पर बैठा हुआ हो और उसके लड़ने वाले लश्कर ने उसके लिए फतहयाबी का अलम लहरा दिया। तो या तो आप ये तरीका इख्तियार करेंगे, और जब मैंने कहा कि वो तरीका है कि पहली अपनी शनाख्त को महव करने के लिए कोई 30 साल 50 साल मजीद एक नई दुनिया बनाएंगे, इन दोनों में से कोई काम भी नहीं किया हमने।
एक बहुत सवाल था सर। अच्छा, मुसलमानों को आज तक जो तस्वीर दिखाई जाती है या उनके जहन में जो आइडियल तस्वुर बनता है वो तो सहाबा इकराम की जमात का है। वहां पर वो ये सोचते हैं कि वो मजहबी लोग, दीनी लोग, और उसमें रसूलुल्लाह के साथी और तक्वा वरा लिल्लाहियत में ऊंची सालहीन की जमात में खड़े हुए, आखिर उन्होंने भी तो इख्तदार संभाला, वो भी तो आए, वो भी तो कुछ ऐसा दान नहीं थे। तो तस्वीर तो मतलब मौला मौदूदी के सामने भी और आवाम के सामने भी जो होनी चाहिए थी, जिस पर अमल दरामद होना चाहिए था कि जी हमारी तो इब्तदा ही सालहीन और कुदसियों की एक जमात से हुई थी, तो दोबारा हमें वही लोग नजर आ रहे हैं तो उनके हवाले इख्तियार कर दें।
यानी कुदसियों की उस जमात ने वहाँ पर इंतखाबात कराए थे, वो लोगों के पास गई थी, उन्होंने कहा था कि आप अपने तासुर को तब्दील कर लीजिए। कुदसियों की उस जमात ने भी तलवार ही उठाई थी
आसमान से,
और उनके लिए आसमान की मदद आई थी। तो देखिए, इसी तरह से हम असल में बाज़ गलत किस्म के क्यासात कायम करते हैं, और फिर उसके बाद जब वो नतीजा खेज नहीं होते तो मायूस होकर बैठ जाते हैं। दुनिया के अंदर कुछ कतई कवानीन हैं जो काम कर रहे हैं। यानी जिस तरीके से न्यूटन ने तबैयात में हरकत के कवानीन दरियाफ्त किए हैं, बिल्कुल इसी तरह से इंसानी नफ्सियात के भी कवानीन हैं। इंसानी नफ्सियात में शख्सियत कैसे बनती है, शख्सियत को फिर इंसानी नफ्सियात किस तरीके से एक तस्वीर में डालती है, फिर उससे इंस्पिरेशन कैसे हासिल करती है, ये सारा अमल समझना चाहिए ना। तो इस सारे अमल में जो उनकी असल शख्सियत बनी है वो तो बड़ी गैर मामूली है, उससे तो दुनिया ने बड़ा इस्तेफादा किया है। उसके मामले में तो कोई नाकदरी की भी बात नहीं है। आलमी सतह पर मुसलमानों ने उनकी कदर अफजाई भी की है जितनी हद तक मुमकिन हो सकती थी। ये सब चीज़ें अपनी जगह हैं। अगर मिसाल के तौर पर वो किसी जगह जाएँ तो उनके बदतरीन दुश्मन भी उनकी इज्जत करने पर मजबूर हो जाएंगे, बतौर एक आलिम के, بطور ایک بہت اچھے انشا پرداز کے، یہ ساری ان کی خصوصیات ہیں. لیکن یہ کہ وہ اقتدار لے کے مسلمانوں کے ان مسائل کو حل کریں گے، اس کی کوئی تصویر بنتی نہیں سرے سے. یہ تصویر تو آپ کو دوبارہ بنانی پڑے گی، یعنی نئے سرے سے بنانی پڑے گی، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. اور یا پھر وہی ہے کہ پرانے طریقے پر اپنا کوئی لشکر بنائیں اور حملہ آور ہو جائیں. اب ظاہر ہے کہ جدید ریاستیں بن چکی ہیں، ان میں اس طرح حملہ آور ہونا، اس طرح کے لشکر بنانا آسان نہیں ہے. یہ تو تاریخی عوامل میں موقع مل گیا کہ خود ریاست نے بہت سے لوگوں کو ہتھیار بھی دیے، ان کو منظم بھی کیا، ان کو اس قابل بھی کیا، ان کے لیے مواقع بھی فراہم کیے تاکہ وہ نتیجہ نکال دیں جس نتیجوں کو اب نتیجے کے طور پر ہم بھگت رہے ہیں. تاہم اس پہ ہوا کیا ہے؟ یہ تو نہیں کہ عوام نے، یعنی میں تو دیکھیے پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ افغانستان کے لوگوں کو آپ موقع دیں کہ وہ آپ کا انتخاب کریں، کرا کے دیکھ لیں، انتخاب معلوم ہو جائے گا، وہاں بھی نتیجہ معلوم ہو جائے گا. یعنی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ لوگوں کو آزادانہ انتخابات کا موقع ملے اور وہ کسی عالم کا اس طرح انتخاب کریں. مستثنیات ہر جگہ ہوتی ہیں، یعنی مثال کے طور پر کسی جگہ کسی عالم نے کسی گاؤں میں کسی علاقے میں ایسا کام کیا ہے، لوگوں کی اس طرح کی خدمت کی ہے کہ ان کو لوگوں نے اس حیثیت سے بھی، تو وہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ دوہری شخصیت ایک لمبے عرصے تک سامنے آئی ہوگی. ورنہ کہ ہاں تو یہ دوسری چیز سرے سے تھی نہیں.
ٹھیک،
وہ لکھنے والے، بولنے والے، اپنی بات کہنے والے، اپنا نقطہ نظر بیان کرنے والے، آپ کہیں گے انہوں نے مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش لکھی، وہ ہائر لیول پر سیاست کا اظہار ہے. اس طرح کا اظہار ہمارے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اپنے خطبات میں کرتے رہتے تھے، ہم جیسے طالب علم بھی یہ بات کرتے ہیں. یہ علم سیاست پر گفتگو ہے، یعنی وہ کیا ہوتا ہے، کیا معاملات ہیں. لوگوں کا معاملہ جب اقتدار سے متعلق ہوتا ہے تو وہاں وہ اپنے مسائل کو حل کرنے والے ایک لیڈر کا خواب دیکھتے ہیں اور اسی پس منظر سے شخصیات کا انتخاب کرتے ہیں. تو پہلی بات جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ناکامی تو گویا مقدر تھی، ممکن ہی نہیں تھا. یعنی سب سے پہلے تو جو شخصیت کسی دعوت کو لے کے اٹھے، اگر وہ اقتدار کی دعوت ہے تو اس شخصیت کو اس حیثیت سے قابل قبول ہونا چاہیے، یعنی اس حیثیت سے کہ وہ ایک عالم ہے، اس حیثیت سے وہ ایک مفکر ہے، یہ تو قابل قبول ہو گیا. یعنی میں آپ سے ایک واقعہ عرض کروں، آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا کہ ان کی یہ حیثیت کتنی قابل قبول ہوئی. میں یہاں مولانا سید سلیمان ندوی کا حوالہ نہیں دوں گا، مولانا علی میاں کا بھی نہیں دوں گا، انہوں نے بھی جو کچھ ان کے بارے میں لکھا ہے اس سے واضح ہے کہ ان کی خدمات کا کس بڑے پیمانے پہ اعتراف کیا گیا. یہ آپ کو یاد ہے کہ ہمارے ہاں بھٹو صاحب کے زمانے میں ختم نبوت کی تحریک اٹھی. ختم نبوت کی تحریک کی قیادت دیوبندی علماء کر رہے تھے، اور یہ بڑی فطری بات ہے کہ کوئی مذہبی معاملہ اگر اٹھے گا تو اس کی قیادت دیوبند کے علماء ہی کریں گے. دونوں مرتبہ آپ دیکھیے، یعنی قومی اتحاد کی قیادت مفتی محمود صاحب نے کی اور تحریک ختم نبوت کی قیادت مولانا یوسف بن نوری نے کی. اس تحریک کے بالکل سمجھیے کہ کلمینیشن پر، یعنی اس کے نقطۂ عروج پر پہنچ کر ایک اجتماع کا اعلان کیا گیا بادشاہی مسجد. بادشاہی مسجد وہ سب سے بڑا اجتماع تھا، میں نے اس کو براہ راست دیکھا ہے، براہ راست سنا ہے. اس میں مولانا سید ولی اللہ صاحب مودودی بھی تشریف لائے. آپ حیران ہوں گے کہ جو لاہور میں بریلوی علماء کی سب سے بڑی درسگاہ حزب الاحناف ہے، اس کے جو اس وقت بڑے عالم تھے، اور یہ وہی خانوادہ ہے جس کا علامہ اقبال کے بارے میں بھی فتویٰ مشہور ہے، وہی خانوادہ ہے، اس کے بڑے عالم سٹیج سیفٹی تھے. اس وقت میرے ذہن میں ان کا نام نہیں آ رہا، یعنی وہ اس وقت ظاہر ہے لاہور کی شخصیات میں بڑی شخصیت سمجھے جاتے تھے، وہ اس بڑے اجتماع کے بادشاہی مسجد میں اسٹیج سیکٹری تھے. اب بریلوی نقطۂ نظر کے لوگوں کو دیکھیے، بریلوی پس منظر میں دیکھیے، بریلویوں کے ہاں مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کے بارے میں جو باتیں کی جاتی ہیں وہ دیکھیے. انہوں نے اعلان کیا اور یہ کہا کہ عالم اسلام کے سب سے بڑے مفکر کو میں اب دعوت دے رہا ہوں.
عجیب، اچھا،
اندازہ کر سکتے ہیں، یعنی ان کی یہ حیثیت مسلم تھی، لیکن اس حیثیت کے ساتھ جو دوسری حیثیت آپ عوام سے منوانا چاہتے ہیں وہ سرے سے پیدا ہی نہیں ہوئی. مسلم ہونا تو ایک بہت دور کی بات ہے، یعنی اس کی پیدائش ہی نہیں ہوئی، لوگوں نے دیکھا ہی نہیں اس کو. جب پیدائش ہی نہیں ہوئی تو پھر زیادہ سے زیادہ وہی ہو سکتا تھا جو ہوا، کہ ایک بڑی تعداد میں جو لوگ ان سے محبت رکھتے تھے، ان سے دین سیکھتے تھے، ان کو جب انہوں نے کہا کہ اس حیثیت سے بھی جماعت کو قبول کرو تو انہوں نے کہا اچھی بات. یہ اصل میں عقیدت مندانہ فیصلہ ہے ये इंसानी नफ्सियात के उसूलों के मुताबिक नहीं है। पहली बात जो
दोबारा कहते कलामी खान साहब, एक चीज़ चूँकि मैं इस नुक्ते को समझना चाहता हूँ। अच्छा, ये बात तो समझ में आती है कि मौलाना जैसा एक आलिम, एक अबकरी, एक नाबगा मुफक्किर इस्लाम का, वो खड़ा होकर दावा करता है एक सोसाइटी में, जो सोसाइटी है वहाँ पर तो ये नहीं है कि आपने 40 साल गुजार दी तो लोग आपको सियासतदान मान लेंगे, बल्कि उस सोसाइटी में तो कुछ ख़ानदान हैं, कुछ फ्यूडल्स हैं, मुस्लिम लीग जिसने मुल्क को आज़ाद कराया है वो खुद नवाबों पर और वहाँ के वडेरों पर और जो सरमायादार हैं उन पर मुश्तमिल है, जिनकी चार चार पाँच पाँच नस्लें जो हैं मुगलों के दौर से वो असल में हुक्मरानी कर रही हैं, सियासत कर रही हैं, और उनके मुकाबले में एक आलिम खड़ा हो जाता है। आम हालात में चले कोई बंदा अगर खड़ा हो तो शायद उसको स्पेस मिल जाए, कुछ मार्जिन मिल जाए, कुछ उसकी अपील पैदा हो जाए, लेकिन जिस जमानो मकान में मौलाना खड़े हुए थे वहां पर तो किसी आम नए सियासतदान को अपना असर रसूख मनवाने में बहुत मुश्किल होती।
मैं आगे यही बात अर्ज कर रहा हूँ। यानी पहली बात तो ये समझ लें कि यहाँ जो शख्सियत का तहव्वुल हुआ है वो असल में काबिल कबूल नहीं, क्योंकि वो सिरे से हुआ ही नहीं। अगर वो हो जाता तब भी ये बहस हो सकती थी कि उन्होंने तो अपना पुराना पस मंज़र छोड़ दिया, एक नई दुनिया इख्तियार कर ली। फिर डॉक्टर साहब ने क्लिनिक बंद कर दिया, फिर वो सियासत करने निकल खड़े हुए, उन्होंने गलियों बाजारों के मसाइल हल करना शुरू किए, अपनी एक जगह बना ली। मिसाल के तौर पर डॉक्टर नज़ीर अहमद साहब, आपके इलम में है कि भुट्टो साहब के उस तूफ़ान में मुंतखब हो गए थे अपने इलाके से। तो इस तरह की मुस्तस्नियात होती हैं, लेकिन यहाँ सिरे से वो चीज़ ही नहीं हुई। पहली बुनियादी चीज़ क्या है। इसके बाद अब दूसरी चीज़ देखिए। दूसरी चीज़ ये है कि मौलाना सैयद मौलाना साहेब मौदूदी ने उस मौके पर क्या फ़ैसला किया। दो फैसले हो सकते थे। एक फ़ैसला ये हो सकता था कि वो इस नतीजे पर पहुंचने के बाद, क्या पाकिस्तान बन गया है, पाकिस्तान में ये मौका मिल रहा है कि यहाँ इक्तदार का फ़ैसला हो। ये इक्तदार का फ़ैसला मुस्लिम लीग के हक़ में भी हो सकता है, किसी और के हक़ में भी हो सकता है। इंतखाबात होने वाले हैं, तो इन इंतखाबात के लिए हम अपने ज़ेरे असर लोगों की एक सियासी जमात बना लेते। एक फ़ैसला ये हो सकता था। ये 50-51 में तो एक मुश्किल फ़ैसला होता, इसलिए कि वो ज़ेरे असर लोगों में से ऐसे लोग कहाँ से तलाश किए जाते। शायद मैं अगर एक निगाह डालूं, और क्योंकि मैं बड़ी हद तक वाकिफ़ हूँ तमाम लोगों से जो उनके साथ थे, तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक दो लोग ऐसे मौजूद थे उस ज़माने में भी जो शायद तैयार हो जाते तो इस तरह का कोई इकदाम किया जा सकता था, लेकिन बहुत मौहूम इम्कानात थे। 70 के इंतखाबात के बाद अलबत्ता, जब वो एक बड़े हादसे से गुजर गए थे, इसका पूरा मौका था, क्योंकि उनकी सारी ज़िंदगी की जद्दोजहद, जो कुछ भी उन्होंने सियासत के मैदान में की, प्रोफेसर गफूर साहब जैसा एक सियासी रहनुमा पैदा करने में कामयाब हो गई।
अच्छा,
यानी वो अपने पस मंज़र, तारुफ और जो कुछ उन्होंने कौमी असम्बली में या अपनी सियासी ज़िंदगी में कारनामे अंजाम दिए, वो अगर आप तारीख पे एक निगाह डाल के देखें, बिल्कुल वाज़े हो जाएगा कि ये हैसियत उन्होंने कौम में बना ली। यानी अब लोग उनको एक सियासी रहनुमा के तौर पर देखने लग गए। उनके साथ ये मामला था, तो 70 के बाद इसके इम्कान थे। यानी आपको कम से कम एक शख्स मिल गया है जो आपके ज़ेरे असर है, जो आपके फ़िक्र को दुरुस्त समझता है, जो उन्हीं चीज़ों को अपना आदर्श मानता है, उसी नस्बोलैन के लिए बरसों से जद्दोजहद कर रहा है, मिल गया है वो आपको, आप बना देते। 50-51 में इसका इम्कान बड़ा मौहूम है। ताहम एक दो तो लोगों के बारे में ख्याल होता है कि अगर ऐसा करते तो कर सकते थे। एक तरीका ये था, ये तरीका उन्होंने इख्तियार नहीं किया। यानी इस तरीके में क्या होता, ज़ाहिर है नई क़्यादत का इंतखाब किया जाता, एक नया नज़्म बनाया जाता, उसके अपने मंशूर दस्तूर वगैरह तय किए जाते, फिर एक जद्दोजहद की पता की जाती। यानी मुझे मालूम है कि तहरीक इंसाफ ये तो हमारे सामने बनी है, तो बनने का अमल कैसे होता है, इब्तदा कैसे होती है, फिर उसको मुख्तलिफ मराइल से कैसे गुजरना होता है, फिर कौन से मौके आते हैं कि जब आप वक्त का इंतखाब बन सकते हैं। मैंने वक्त का इंतखाब की जो ताबीर इख्तियार की है वो बड़ी मानी खेज़ है, अगर आप उसको देखेंगे तो ये सारे मराहल जो हैं वो हो सकते थे। उन्होंने ये तरीका इख्तियार नहीं किया। उन्होंने ये किया कि जो उन्होंने एक मजहबी जमात बनाई थी उसी को सियासी जमात में तब्दील करना चाह, या यूं समझिए कि उसको एक दोहरा रोल देना चाह कि वो एक मजहबी जमात के तौर पर भी काम करे और सियासी जमात। उनके इस इकदाम का एक तो बहुत खैर का नतीजा पैदा हुआ, वो ये है कि मजहबी जमात खात्मे की तरफ बढ़ गई।
जी
ये तो बहुत खैर का नतीजा। उसकी वजह ये है कि आप जानते हैं कि मैं मुसलमानों में किसी मजहबी जमात के क़याम को बिल्कुल गलत समझता हूँ। मजहबी जमात एक ही है, वो कायम हो चुकी, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की नस्बत से है, उसका नाम मुसलमानों की जमात है, उसको खुदा ने भी हिजबुल्ला कहा है। मज़हब की खिदमत के कामों को कुरान ने बता दिया है कि वो कैसे होने चाहिए, उसमें बड़ी वजाहत से ये बात कर दी है कि दीन के अच्छे उलमा पैदा हों, दीन में बसीरत पैदा करें, वो लोगों को ख़बरदार करें, इंतज़ार करें। ज़ाहिर है कि दीन की बसीरत पैदा करने के इदारे भी बन जाएंगे, दीन का सही फहम आम करने के तरीके भी बहुत से इख्तियार किए जा सकते हैं। उसके लिए मुसलमानों की जमात में कोई एक जमात बनाना, ये दर हकीकत उम्मत के अंदर उम्मत बनाना है, ये रियासत में रियासत बनाना है। इस वजह से इसकी तो हर हाल में हौसला शिकनी होनी चाहिए। मेरे ख़्याल में उनके साथ, ज़ाहिर है ये आप जानते हैं कि मुझे उनकी ताबीर दीन से भी बहुत से इख्तलाफात हैं, इस इकदाम से भी मैं कभी मुत्तफिक नहीं हुआ। यानी मुझे ये इख्तलाफ है जब से, यानी उस ताबीर को मैंने गलत समझा है। जब तक उस ताबीर को मैं दुरुस्त समझता था उस वक्त तक तो ये सारी बातें दुरुस्त थी, लेकिन जिस वक्त वो ताबीर वाज़े हो गई कि उसमें क्या गलती है, तो ये चीज़ भी बिल्कुल वाज़े हो गई कि इस तरह की कोई मजहबी जमातें कभी नहीं बननी चाहिए। मैं आपसे सच अर्ज़ करता हूँ कि वो वक्त ज़्यादा दूर नहीं है जब देवबंद के उलमा तबलीगी जमात के बारे में भी यही राय कायम करेंगे।
जी अच्छा
उसकी वजह बिल्कुल वाज़े है, और वो ये कि आमतुन्नास को ये दावत व तबलीग का काम नहीं सपुर्द किया जा सकता, ना सपुर्द करना चाहिए। अल्लाह ताला ने बता दिया है कि ये सिर्फ़ दीन में तफक्को, दीन में बसीरत रखने वालों का काम है, उन्हीं को करना चाहिए। आमतुन्नास को आप ये जिम्मेदारी देंगे तो उसके नतीजे में बड़ी खराबियाँ पैदा होंगी। यानी इस वक्त मेरा वो मौजू नहीं है, मैं उस पर बात नहीं कर रहा। तो खैर, ये तो एक बड़ा उम्दा नतीजा निकला कि उन्होंने जब उसको सियासत का रुख दे दिया तो इससे ये बात बिल्कुल वाज़ हो गई कि अब बतदरीज इस जमात को अपने मजहबी शनाख्त में तहलील हो जाना है। ये तहलील होने का अमल जारी है। अब आप देख सकते हैं कि इस वक्त मजहबी एतबार से किसी रिप्रजेंटेशन में वो कहीं नहीं खड़े हुए।
बिल्कुल ठीक।
यानी ऐसा नहीं है कि वो मौलाना मौदूदी के कोई ख़ास फ़िक्र की या किसी ख़ास ताबीर के नुमाइंदगी करते हों, या उसके अलमबरदार हों, या उस पर कोई इल्मी काम कर रहे हों, या उसके बारे में कोई दावत व तबलीग का फरीज़ा अंजाम दे रहे हों। वो चीज़ें अब किस्सा माजी हो चुकी, यही होना था और ये एक खैर का काम है। मौलाना सैयद वल्लाह साहब मौदूदी के इल्म को भी अगर आगे बढ़ाने के लिए या उनके इल्मी काम पर मज़ीद काम करने के लिए भी कुछ करना है तो वो इल्मी इदारों ने करना है, उलमा ने करना है। अच्छे अहले इल्म उनके यहाँ भी पैदा हुए हैं, वो कर लेंगे। इस तरह की किसी मजहबी जमात की कोई ज़रूरत मुसलमानों को कहीं भी नहीं है, ना बननी चाहिए। ये जहाँ बनेगी ये फ़िरकों को जन्म देगी, खराबियों को जन्म देगी। अल्लाह ताला ने अपने दीन के बारे में हर सवाल का जवाब दे दिया है, यानी ये बता दिया है कि उसमें लोगों की इस्लाह के लिए क्या तरीका इख्तियार करना, और वो सूरह तौबा के आखिर में बयान कर दिया है। उसमें वही सही तरीका है जो हमेशा से इस उम्मत में रहा है कि बाज़ लोग ये फ़ैसला करते हैं कि वो दीन के आलिम बनेंगे, फिर वो दीन के आलिम की हैसियत से अपनी सलाहियत के मुताबिक खिदमत करते हैं। कोई इल्म व तहकीक में कर लेता है, कोई दावत व इस्लाम में कर लेता है, कोई तालीम व तालुम में कर लेता है। दीन की खिदमत के यही तीन काम है। इसके लिए ना किसी जमात की ज़रूरत है, ना किसी तंजीम की ज़रूरत है। तो ये मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि खैर का काम हुआ, इसको एक जुमला मोतरजा समझिए। उन्होंने ये कोशिश की कि वो एक सियासी जमात में उसको तब्दील कर दें। सियासी जमात क्या होती है? सियासी जमात असल में दो अनासिर का मजमूआ होती है। एक उनसर उसमें उन कारकुनों का होता है जो सियासी रहनुमाओं के लिए बिल्कुल उसी तरह के जज्बात अपने अंदर पैदा कर लेते हैं जो मजहबी रहनुमाओं के लिए उनके मोतकदीन पैदा कर लेते हैं।
ठीक,
आप उनको सियासी कारकुन कह सकते हैं। यानी जब भी कोई सियासी रहनुमा पैदा होता है तो वो फितरी तौर पर लोगों के लिए मंबा इल्हाम बनता है, यानी उनके लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनता है। जिस तरह से एक बड़ा आलिम पैदा हो जाए तो लोग उससे मुतासर होते हैं कि हम इससे दीन सीखेंगे, इससे हमें आखिरत के बारे में मालूम होगा, इससे हमें मरने के बाद क्या होगा उसकी मालूमात। मैं आप सच अर्ज़ करूँ कि आम लोगों के पास आप जाएँ तो आप ये हैरान रह जाएंगे कि ज़रा पढ़े लिखे लोग कोई चंद मुश्किल चीज़ें जो हैं, ये लौंडियाँ क्या होती हैं, ये ग़ुलाम क्या होते हैं, वो सवाल आपसे कर लेंगे। मैं आम लोगों की बात कर रहा हूँ। बाकी लोग ये पूछ रहे होंगे बरदख में क्या होना है, फरिश्ते सवाल कैसे करेंगे। तो लोगों की जो दिलचस्पियाँ होती हैं वो मजहबी लिहाज से बहुत मुख्तलिफ होती हैं। इससे ऊपर एक तादाद ऐसी होती है कि इल्मी तौर पर चीज़ों को समझती है, जानना चाहती है, उसकी बुनियादों के अंदर उतरना चाहती है, उनकी तादाद बड़ी कम होती है हमेशा से। तो जिस तरीके से ये मामला होता है, और इसमें लोग एक मोहब्बत महसूस करते हैं, किसी बड़े आलिम से ताल्लुक़ महसूस करते हैं, और उस ताल्लुक़ के लिहाज से वो ये चाहते हैं कि वो उसकी कोई खिदमत करें, उसकी नुसरत करें। ये फितरी जज्बा है, यानी पैगंबरों को भी ये चीज़ इसी तरह से हासिल हुई है, उलमा को भी हमेशा हासिल होती रही है। बिल्कुल इसी तरीके से जो सियासी रहनुमा होते हैं उनके साथ भी लोगों के लिए मोहब्बत पैदा हो जाएगी। तो एक गोया यूँ समझिए कि सियासी कारकुनों का गिरोह होता है, ये हर सोसाइटी में पैदा हो जाता है
ठीक
आपसे। और ये सियासी कारकुनों का गिरोह पैदा कब होगा? जब सियासी रहनुमा होंगे।
लीडरशिप
तो सियासी रहनुमा भी बिल्कुल उसी तरह पैदा होते हैं जिस तरह दूसरे शोबों के माहिरीन पैदा होते हैं। यानी अल्लाह ताला ने सलाहियतों का तफावत रखा है, उनमें फ़र्क रखा है। वो सलाहियतें जब किसी शख्स में होती हैं और वो हौसला मंदी के साथ किसी जद्दोजहद के लिए निकलता है, पुराने ज़माने में वो अपना जथा बना के, लश्कर बना के निकलता था, मौजूदा ज़माने में वो अपनी सियासी जमात बना के निकलता है या किसी सियासी जमात का हिस्सा बन के निकलता है। तो वो लोग जो फितरी तौर पर इस मकसद ही के लिए पैदा हुए हैं, उनके अंदर इसकी फितरी सलाहियत मौजूद है, उनको फितरी तौर पर वो हालात भी मैसर हैं जिनमें इस नौईयत की खिदमत की जा सके। वो जब मैदान में उतरते हैं तो जिस तरह एक आलिम का इल्म लोगों को इंस्पायर करता है, उनकी शख्सियत भी इसी तरीके से लोगों के लिए तवज्जो का बायस बनती है। ये दो अनासिर हैं जो मिल के सियासी जमात बनती है। वो सियासी जमात छोटी हो या बड़ी, उसके बनने के बुनियादी अनासिर ये हैं। अब इसमें क्या है, यानी मजहबी कारकुनों को सियासी कारकुनों में बदलने की कोशिश, और वो लोग जो मजहबी पहलू से कुछ रहनुमाई करने के काबिल थे उनको सियासी रहनुमाई पर तब्दील करने की कोशिश, ये दोनों नाकाम होनी थी, ये नाकाम हुई हैं, इनका मुकद्दर नाकामी है। ज़्यादा से ज़्यादा ये वही कर सकते थे कि चलिए अगर कोई खिदमत का काम करना है तो खिदमत खल्क का कोई काम कर ले, इसके सिवा नहीं हो सकता था। तो वो बुनियादी अनासर जो सियासी जमात की ज़रूरत होते हैं वो जमात इस्लामी में मैसर ही नहीं। मैंने आपसे अर्ज़ किया है कि अगर पूरी इस सारी 60-70 साल की जद्दोजहद में देखें तो शायद एक दो लोगों के बारे में कहा जा सकता है कि वो उस तरह के सियासतदान फितरी तौर पर बन के निकल खड़े हुए, एक दो लोग, वो भी एक पूरे नज़म के अंदर काम करेंगे, पूरा नज़म गैर सियासी है। तो एक गैर सियासी नज़म से सियासी नतायज की तवक्को करना, ये हकीकत है कि ये मौलाना मौदूदी साहिबी की करामत
जी।
तो ऐसी करामतें दुनिया में रोज़ रोज़ नहीं होती।
बिल्कुल,
तो ये मैंने मुख्तसर तौर पर दो पहलू भी बयान किए हैं, कुछ और चीज़ें भी इसमें हैं, वो आप चाहेंगे तो बयान करें।
चलो उसको ज़ेर बहस लेकर आते हैं। गामदी साहब ने आज बहुत ही दिलचस्प बास पहलुओं पर हमें तवज्जो दिलाई है, गौर फिक्र की चीज़ें हैं। लेकिन एक नुक्ता मेरे जहन में आता है गाम साहब, वो ये कि मौला मौदूदी ही की सियासी फिक्र से मुतासर हो के मिस्र के अंदर एक सियासी तंजीम बनती है, और उस सियासी तंजीम को आखिरकार हमने देखा कि इकतदार हासिल हुआ इस ज़मीन पर। अगर गांधी साहब की सारी थ्योरी ठीक है तो फिर उस सियासी जमात इख्वानुल मुस्लिमीन को ज़मीन पर इख्तदार कैसे मिल गया, सब कुछ ज़ेर बहस आएगा। वक्त यहाँ पे ख़त्म होता है, दोबारा हाजिर खिदमत होंगे। अब तक आपका बहुत शुक्रिया।